संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुण समय साल निर्जराधिकार में 235 और 236 में गाथा चलेगी, जो क्रमशः वात्सल्यंग और प्रभावना अंग से संबंधित रखती है। बोलो जो कोण भी
बैठा पिन्नम साहूण मुख मगमी सोबल भाव जुदो समाधि मुड़े दबो विचार मारूड़ो मणो रह पहे शुभमय जो चेदा सोजनाण पहावी समाधि मुड़े दबो मुक्ति मग गति साधु त्रय प्रति रखे बसल भाव जो प्रियाते मा बसली सम्यक दृष्टि है यह जानना सद ज्ञान रथ आरूढ़ हो जो भ्रमे मन रथ मार्ग में प्रभावक जिन मारे के सदस्यों को जानना।
ये वात्सल्यंग और प्रभावना अंग का निश्चय नैतिक दृष्टिकोण से किया गया कथन है। इसमें पहले अपन सामान्य अर्थ करते हैं, फिर इसकी जो विशेष बातें हैं वो बताएंगे। जो कोणादि वत्सलत्वम तिन्नम साहूण मोक्ष मगम्मी, जो मोक्ष मार्ग में स्थित तीन प्रकार के जो साधु हैं उनसे जो वात्सल्य रखते हैं, वे वत्सल भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए और विद्यारूपी रथ पर बैठकर मनोरथ रूपी रथ में के रास्ते में जो आत्मा भ्रमण करता है वह जिन धर्म की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सामान्य से अर्थ है। अब इसमें थोड़ा गहराई इस बात में है कि वात्सल्य अंग में तिन्नम साहूण इस पद पड़ा है। देखो इसका एकदम स्पष्ट अर्थ दिखाई देता है, तीन प्रकार के साधु। साहू शब्द जो है नमो लोये सब साहूरम, तो प्राकृत भाषा का साहूरम साहूण ये शब्द साधु के लिए का सूचक है और तिन्नम साहूरम तीनों प्रकार के साधु। तो तीनों प्रकार के साधु कौन है? अरहंत सिद्ध तो देव हैं, तो आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीन प्रकार के साधु, ऐसा सीधा अर्थ अपन को दिखाई देता है। अपन को दिखाई देता है का क्या अर्थ है? क्योंकि आत्मख्याति ने मैं अमृतचंद्र ने ये अर्थ नहीं किया, उनने अर्थ किया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन। देखो आत्मख्याति पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि जीव संकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपने से अभेद बुद्धि से सम्यकतया देखता है अनुभव करता है, इस कारण मार्ग वत्सल है, मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, वात्सल अंग का धारी है, ये अर्थ कहते हैं। समस्या समझ में आई ना क्या? अब ये नीचे का निश्चय परक अर्थ है और ऊपर का जो अर्थ मैंने बताया वो व्यवहार परक है। गाथा का जब अर्थ लिखा तो मैंने अभी पुरानी जो किताब है ना पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जो टीका है उसको बुला करके भी देखा इसके लिए कि वे क्या लिखते हैं, तो उसमें भी अमृतचंद्र का अर्थ लिखा है लेकिन कोष्टक में तीनों साधुओं का भी लिख दिया, समझ में ना। अपन ने भी देखो इसका मूल अर्थ में लिखा, जो चेतयता मोक्ष मार्ग में स्थित निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य उपाध्याय और साधु इन साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है वह वात्सल्य अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इतना अंतर आया है कि उसमें एक कोष्टक में है आचार्य उपाध्याय और साधु व्यवहार से, पर अपन ने कोष्टक में नहीं लिख के सीधा लिखा है, तो इतना अंतर है। लेकिन अमृतचंद ने ये व्यवहार वाला अर्थ है बिल्कुल कहीं उसका संकेत भी नहीं दिया, तो सीधा कहा कि निश्चय रत्नत्रय में उनका वात्सल्य है। वो निश्चय रत्नत्रय भी किसका, स्वयं का, माने किसी दूसरे से वात्सल्य की बात नहीं है। ये आठों अंगे स्वयं अपने में ही होना चाहिए, समझे ना। कल मैंने कहा था कि ये आठों अंग 24 घंटा रहने की चीज है, और जब दूसरे से की बात आएगी सामने तो वो 24 घंटा रहने की बात उसमें संभव दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अपन कहेंगे कि भाई वो धर्मात्मा जीवों से वात्सल्य रखे, उन तीन साधु लिखा है ना, तीन साधुओं से, लेकिन दूसरे साधु हुए ही नहीं, तो अभी अकेले ही साधु हैं, एकल विहारी हैं। अगर दूसरे साधु जो लोक में हैं उनमें से कोई ज्ञानी धर्मात्मा दिखे ही नहीं। आज की परिस्थितियों में भी हमको स्पष्ट दिखाई देता है, और आदिनाथ के समय में भी, आदिनाथ के साथ जो साधु थे 4000 सब कैसे थे। अब आदिनाथ किससे वात्सल्य रखते उनमें से, बोलो। मैंने युग की आदि का उदाहरण देखते हैं तब भी ये परिस्थिति है, और आज भी देखते हैं ये परिस्थिति है, और हम साधु संघों में भी देखते हैं कि भाई एक वो अपने को ही सही मानते हैं और दूसरों को सही मानते ही नहीं, एक संघ वाले दूसरे संघ वालों को, एक दूसरे की स्पष्ट आलोचना करते देखे जाते हैं। यानी जिसे अपन वात्सल्य भाव कहते हैं वो तो दिखाई नहीं देता, तो वो कह सकते हैं कि वात्सल्य के काबिल कोई होना चाहिए ना, वो अपना तरह से प्रणत तो होना चाहिए। खड़ाला में लिख दिया, धरनी सो गोवत्स प्रीति सम, कि धर्मात्मा जीवों से जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है ऐसा प्रेम करे, तुमने वो व्यवहार वाला ही ले लिया ना, निश्चय वाला लिया ही नहीं है। तो सिद्ध उपाय में जरूर उनने भावना अंग में रत्नत्र तेजता आत्मा को प्रभावित करे वात्सल्य अंग में भी लिखा, निश्चय व्यवहार दोनों लिए है ना। तो वो 24 घंटे संभव नहीं है हर क्षेत्र में और हर काल में, साधनियों की उपलब्धि सहज हो ही जाए ये संभव नहीं है। तो साधर्मी नहीं है तो विधर्मी से भी वात्सल्य कर ले, क्या कर ले, क्या करे, क्योंकि वो तो साधर्मी के प्रति कहा है ना, मुनि को मुनियों के प्रति कहा, क्योंकि उनके संग में निरंतर उन्हीं का समागम रहेगा। गृहस्थों को गृहस्थों के प्रति कहा है ना, तो इसमें देखो मूल में अमृतचंदाचार्य ने क्लियर किया। अब जो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने में अभेद बुद्धि से सम्यकतया देखता है, गाथा में इसमें दूर से भी गंध दिखाई दे रही, एक उन्नति वत्सलत्तम तिन्नम साहूणम, अब तीन प्रकार के साधु आ गया ना क्लियर शब्द में, और मोक्ष मद्गम्मी मोक्ष मार्ग में रहने वाले तीन प्रकार के साधु क्लियर दिखता क्या नहीं दिखता अपन को। अब वो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में स्थित, इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान तारित्र से युक्त। अब ये अमृत अमृतंधातारी ये अर्थ करते हैं निश्चय नए से, और वो बिल्कुल सही है कि वो मोक्ष मार्ग से उसका वात्सल्य है। मार्ग में चलने वाले दूसरे जीवों की बात नहीं है, उसका किससे है? मोक्ष मार्ग माने रत्नत्र है, माने उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से वात्सल्य होना, और वो भी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से व्यवहार भी बनेगा, तो वे दूसरे में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होंगे तो ही बनेगा ना, वो तो पर होने से व्यवहार हो जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना तो वात्सल्य भाव की बात ही नहीं आती है। जैसे देखिए आहार दान है, तो नवदा भक्ति दातार के सात गुण और मुनि का बात, सच्चे मुनि को वितरागी छठ में सात में गुणस्थान, अरे पात्र की भी बात करी ना, और लिखा है ना कि उत्तम पात्र को देना सर्वश्रेष्ठ है, मध्यम को जघन्य है, मध्यम है और जघन्य को जघन्य है, और व्यर्थस्तु वो अपात्रे दया, अपात्र में दिया गया दान तो बिल्कुल व्यर्थ है। इतना स्पष्ट शब्दों में लिखा, व्यर्थस्तु अपात्रे दया। अब आज कहते हैं हमें पात्र मिले ही नहीं तो क्या करें, दान ही नहीं दे रहे हैं, कैसे दे? तो फिर वो दया दान में आएगा, तो वो दया का पात्र होना चाहिए ना, वो तो श्रद्धा का पात्र बना के दे रहे तुम। कोई मुनिराज दया के पात्र हो सकते हैं क्यों? तो जब सम्मत दर्शन ज्ञान से मंडित हो तो वे उत्तम पात्र हैं, सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र से मंडित नहीं है तो वे जघन्य पात्र भी नहीं है। अब जे बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे और जो जो ये कह रहे, तब ये कौन से दान में आता है? कहने साहब जीवों का जीवन बचता है और उनका दुख मिटता है, तो जितने जीवों का जीवन बचता है उससे अनंत गुणों का मिटता है। क्या श्री रसोमानी जी समझ में आया कुछ क्या नहीं? ये सब एंटीबायोटिक्स क्या है? बाइट माने है ना, जो कीटाणु हैं उनके नाशक, वे भी जीव है ना, तो उन अनंतों को मारा और आपने एक को बचाया, और जिसको बचाया जैसा वो और जिनको मारा वैसे वो, तो समझ रहे ज्ञान चाहे तो दोनों के ही नहीं है। जिन्हें मारा वे कम से कम दया के पात्र तो थे, क्यों? क्या करें यदि दान का भी सही स्वरूप बताएं तो इस समाज में जिंदा रहना मुश्किल है। बोलो, जो शास्त्रों में लिखा अपनी तरफ से नहीं, जिसको समझना होगा अपनी योग्यता क्षमता से शास्त्र पढ़ के ही समझना होगा, समझाने वाला तो बहुत मर्यादा में बोलेगा, बोलना तुम लोग भी मेरे जैसा मत बोलना, ये 77 वर्ष के बुद्धे की बात जुदी है, तो तुम्हें नया जीवन शुरू करना है क्या? इसका तो क्या होने वाला है, आज मरे हो कल तीसरा दिन होने वाला है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तुमको तो बताए जाते हैं ना, हम तुम्हारे लिए है वो, ये मन स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, शास्त्र की मर्यादा में लिखा हुआ है। अब ये जो वात्सल्य भाव करने के लिए भी वो कहते हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त धर्मात्माएं है, वे ही हैं, वात्सल्य के पात्र भी वे ही हैं। छड़ाला ने क्या लिखा छड़ाला ने, क्या लिखा हमारी पिता जी कि धर्मी सो गोब बत्स प्रीति सम, तो धर्मी से लिखा ना, यहां धर्म से लिखा, वहां धर्मी से लिखा, लेकिन अधर्मी से तो नहीं लिखा, अधर्म से तो नहीं लिखा। अच्छा आप धर्मी की बजाय अधर्मी से करें तो धर्म की बजाय अधर्म से करना हो गया ना, यानी सम्मत संज्ञान तारित्व के बजाय मिथ्या संज्ञान तारित्व से वात्सल्य भाव करना हो गया, तो उसकी क्या पोजीशन होगी। समर्थन के लिए मूल अंग है, हमें चंद्र ताई देव तो उसमें से भी वो ही निकालते हैं। कौन देखो कि सम्यक दृष्टि जीव, संस्कृत में देखो ये तो ही सम्यक दृष्टि टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव मयत्व ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम है ना सस्मात अभेद बुद्धिया सम्यक दर्शनाथ मार्ग बत्सलह, ये मार्ग बत्सल हुआ। सम्मत ज्ञान चारित्र से प्रेम रखना ये सम्मत दर्शन का अंग हुआ ना, सम्मत दर्शन का अंग है, ये कोई तीनों का अंग नहीं है। सम्मत ज्ञान चारित्र का तीनों से प्रेम रखना सम्मत दर्शन का, सम्मत ज्ञान चारित्र से प्रेम रखना। देखो मान लो किसी जीव को समर्थन है कि नहीं है तो वो क्या समझ, तो वो समझ ज्ञान चारित्र से रखे ना सामान्य, मुख्य तो वो हो गई ना दर्शन ज्ञान चारित्र से बात चल ले, ये प्रभावना में भी आएगा। तो मार्गान उससे मार्गान अवलंब कृतो नास्ति बंधा, कि जिनको मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है उससे जो उन्हें कर्म बंध होता वो कर्म बंध नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मार्ग प्राप्त हो गया है और इसलिए उनको निर्जरा होगी। कितना क्लियर लगा संस्कृत में, देखो हिंदी पढ़ लो संस्कृत पढ़ लो, इतनी संस्कृत तो तुम लोग जानने लग गए हो ना, और शांति जी तो तुम्हारे लिए संस्कृति पंक्ति पंक्ति से पढ़ाते हैं ना, ऐसा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तुमको सारे हिंदुस्तान में जाके देख लेना है? मैं वैसे ही पागल नहीं हूं जो ताज इसकी बोल दू, इससे किसी की प्रशंसा आसानी से नहीं निकलती है, लेकिन आचार्य की पंक्ति महिमा तो आचार्य की है ना। क्या देखो अब बासलंग का धारी है और ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करके विकसित करके स्वयं में प्रभाव उत्पन्न करता है। देखो ज्ञान की शक्ति को प्रकट करके सम्यक ज्ञान की और अपने में ही प्रभाव उत्पन्न करता है, दुनिया को प्रभाव दिखाने की बात नहीं है, वो प्रभावना करता है, उसी का नाम है प्रभावना करना। उसने आता ना विश्व प्रसाद जी के बारे में क्या आता है, आत्मा गुण प्रभाव नहीं हुआ था, रत्न के तेज से अपने आत्मा को प्रभावित करना, प्रभाव प्रभावित करना उसी में प्रभाव उत्पन्न करना, उसका नाम प्रभावना अंग है। इस कारण प्रभावना अंग का धारी है, इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला कि मोक्ष मार्ग मिला ही नहीं है, जो बंद होता था वो बंद नहीं होता है किंतु निर्जरा होती है। मार्ग की अनुपलब्धि यानी उससे बंद होता था ना, अब आप आजकल प्रभावना क्या हो गया देखो, जुलूस निकालना 20-20 हाथियों का, तो प्रभावना होती है ना जैन धर्म की, बैंडबाजे निकालना, उसमें छना अनछना पानी का रास्ते में पिलाना, उसमें क्या क्या खिलाना पिलाना जो भी आप करते हो, मुझे ज्यादा मालूम नहीं क्योंकि मैं कभी जाता नहीं जुलूस में, है ना, ये भी हाथी सब एरिया समिति पूर्वक चलते होंगे, वो हाथी के पैर के नीचे जो आ जाता होगा उसका तो मोक्ष नक्की है ना, क्यों बोलो क्या है, बोलिए विचार करो, इसमें कहां प्रभावना है, मूल बात तो बिल्कुल ही गायब हो गई। अब मैं ये बात कहता हूं कि भाई इनको हाथी माती की जरूरत नहीं, अरे साहब ऐरावत हाथी आया था, अरे वो तुरंत गति का नहीं था, वो देवगति का था और उसके पैर के नीचे आकर कोई जीव नहीं मरता है, उनकी तो स्थिति अप्रतिघाते जैसी होती है ना। ये क्षीर सागर का जल क्यों लाते हैं अभिषेक करने के लिए? उन्होंने क्षीर माने दूध मान लिया, उसे दूध का अभिषेक शुरू कर दिया। आपको मालूम क्षीर समुद्र में तृष्ण जीव नहीं होते, इसलिए उस पानी को छानना नहीं पड़ता। इतना पानी अनछाना उनके माथे पर डाल दिया जाता है, क्योंकि छानने से स्थावर जीव तो निकलता नहीं, तो तृष्ण निकलते हैं और तृष्ण उसमें होते ही नहीं है। और उसमें कैसे क्या है कि वो क्षीर समुद्र से जो देवता जल लाते हैं, तो आपने पढ़ा कभी कि वो वहां से वहां तक पूरी लेन लगा देते हैं, पर एक ने उसमें से भरा और उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसे इतने होते हैं कि पांच में समुद्र से लेकर सुमेरु पर्वत तक ऐसी लेन लग जाती है। जो मजदूर लोग होते हैं ना, तो वो यहां से वहां चलते नहीं है, वो एक ने वो भरी तगाड़ी और वो इसको देता है, ये उसको देता है, वो उसको देता है, ऐसे देते देते छत पर पहुंच जाती है। पर छत पर क्योंकि वो उस पर खड़े रहते हैं ना सीढ़ियों पे, अब सीढ़ियों पर से बार बार उतरना चढ़ना संभव नहीं ना, नीचे है वो माल मसाला, ऊपर छत है, तो नीचे से ऊपर जाने को हरेक को है तो जीना चढ़ना पड़े। क्यों? क्या वो नशे नहीं लगाई है, वो चढ़नी पड़े, तो उसमें ज्यादा श्रम है, तो एक एक खड़े हो जाते हैं, ऐसा ऐसा देते हैं। अभी ऐसा कर सकते हो आप? तो क्या मैं खड़ा रहा हूं समुद्र में, बोले तो भगवान के ऊपर तुम डोल रहा? अरे वो तो अकेला 100 रुपए पे डोलेगा, बाकी के सब यहां से उठा के वहां देंगे ही, लेकिन ये तो हरेक पे चाहिए। मैंने 11,000 से, मैंने 11,00,000 से, मैं तो खुद डोलूंगा भगवान के माथे पर। तो वो असली नकल भी कहां हो रही? अरे भाई जोर जो कुछ करना है करो, लेकिन जिसमें हिंसा अहिंसा का संबंध है उस मर्यादा को तो कायम रखें, जिसमें भोग का पोषण है उस मर्यादा को तो कायम रखें, जिसका राग का पोषण है उस मर्यादा को कायम तो हम रखें। मेरे कहने का मतलब यह है, देखो ये हो गया, अपना आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों के संदर्भ में निश्चय अंग और व्यवहार अंग का स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो जाता है, किंतु इस समयसार ग्रंथ में निश्चय की मुख्यता से ही इन अंगों का कथन है, इस बात पर विशेष ध्यान रखने योग्य है। अभी देखो अपन देख लेते हैं और सबको, आज इसे खत्म करना है, कल से बंधाधिकार चलेगा। और कहां वो सागर शिविर के आगे वो निकाल के देना भाई राजेंद्र। हाँ। अब देखो गुरुदेव श्री का पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मार्मिक है, उनने भी कितनी गहराई से इस बात को पकड़ा था, इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आगे से कर रहा हूं। देखो यहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को साधु साधक त्रय कहा है, मैंने साधु और साधक त्रय कहा है। मूल में तो साधु दिख रहा ना हर एक को, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही साधु है, यही 3 साधक हैं। हावड़ा जी है आपके पास, मूल पाठ में 3 साहूणम कहा है, जो खुद पकड़ रहे ना, अपना जो एक त्रिकाली भाव है उसके सिद्धांत ज्ञान चारित्र ये 3 साधक हैं। अब मेरे साधक मैंने आचार्य उपाध्याय और साधु आत्मा की साधना कर रहे, तो कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र देना। आत्मा की परमानंद रूप मुक्ति का दर्शन सम्मर्शन ज्ञान कार्यत्र साधन है। यह एक व्यायक भाव में नित्यानंद स्वरूप प्रभु आत्मा को ध्येय में लेने से समकृति के जो सम्मर्शन ज्ञान तात्की साधक दशा है वह पूर्णानंद रूप मोक्ष का साधन है। निमित्त साधन व व्यवहार साधन की बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो सम्मर्शन ज्ञान तारित्र को साधन कहा है। अब उनने भी पढ़ा था क्या धर्मीसम गोवच्छ प्रीतिसम, ये सब व्यवहार की परिभाषाएं, अपन तो वहीं चले जाते हैं बार बार। लेकिन वो बराबर इस बात को अमृतचंद ने जो अर्थ किया है आत्मख्याति को पकड़ के चल रहे हैं। अपने एक गायक भाव में स्थित दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने ही द्वारा अभेद बुद्धि से अनुभव करना, ये आत्मा ही है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है, ऐसा अभेद बुद्धि से अनुभव करना ही सच्ची धर्म वत्सलता है। ये धर्म से प्रेम की बात है, धर्मी से प्रेम की बात नहीं है। धर्म से प्रेम ये निश्चय की बात है और धर्मी से प्रेम ये व्यवहार की बात है। इसी का नाम मार्ग वात्सल्य अथवा मोक्ष मार्ग के प्रति प्रेम भाव है। मोक्ष मार्ग के प्रति, मोक्ष मार्ग में चलने वालों के प्रति भी नहीं, उसमें व्यवहार हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग के विरोध करने वालों के प्रति तो है ही नहीं। सच बोलो छाती पे हाथ रख करके, सब जो जिन लोगों ने इस बारे में सोचा है विचार किया है अरवा जिन्हें क्या हमने जो सबसे प्रेम रखना, तो उन सब में किन किन को लिया? अपने सब जैनी से यही लिया ना, वे तो अपने साधर्मी है ना, वे थोड़ी विधर्मी है। क्यों अपनी साधर्मी की परिभाषा क्या है बोला? सम्यक दृष्टि का साधर्मी कौन हो सकता है? सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि हमने एक कहा किया, मैं जैनी का जैनी साधर्मी है, हम तो और भी आगे बढ़ते, श्वेतांबर भी अपने साधर्मी ही है, दिगंबर भी सब अपने साधर्मी है। हमारा जो साधर्मी की व्याख्या है वो कहां जाती है? नहीं साहब अब नहीं है तो जो है तो बेई उन्हीं से करें। तो उन्होंने टोडरमल जी ने लिखा ना, जो साहू के वाक्य, जो साधु हैं तो उनमें इनकी स्थापना करके मान लें। ऐसा है कि किसी के पति ना हो, पति का स्वर्गवास हो जाए तो किसी दूसरे में पति की स्थापना करके उसे मान सकती है पत्नी? पत्नी पति क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि में सम्मत दृष्टि की स्थापना कर दे? इसे तो पत्थर में कर दो भले आदमी, अपने यहां जो स्थापना निश्चित है वो अजीब में होती है तीर्थंकरों की, ये मूर्ति होती है उसमें अपन तीर्थंकर की प्रतिष्ठा करके भगवान मान लेते हैं, लेकिन किसी आदमी में प्रतिष्ठा करके नहीं मानते हैं। उनके यहां रामलीला में राम बन जाता है कोई, अपने कोई महावीर नहीं बनता नाटक में। क्यों? क्योंकि चेतन में चेतन की प्रतिष्ठा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि कम से कम इसमें सर्वज्ञता नहीं है इस मूर्ति में, तो बीत रागता तो है, ये किसी से राग द्वेष तो नहीं करेगी। उस चेतन में तो सर्वज्ञता की बात भी नहीं है और बीत रागता भी नहीं है, वो तो राग द्वेष का पिंड है। उसमें कैसे स्थापना करे? देखो अपने ये हो गया, भगवान आत्मा अकेला ज्ञान का पुंज प्रभु है, उसके आश्रय से प्रकट हुई ज्ञान की पवित्र दशा ही ज्ञान का विकास है। ज्ञानी समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाला होने से प्रभावना अंग का धारक है। वर्तमान में ज्ञान की अंश रूप प्रकटता है, उसे ही वह पूर्ण प्रकट करने वाला होने से प्रभावना करने वाला है। क्या जो अंश प्रकट हुआ ना सम्यक ज्ञान का, उसे वो केवल ज्ञान रूप में परिणमित करेगा तो वो प्रभावना होगी उसकी। अतः उसको ज्ञान की प्रभावना के अपकर्ष से होने वाला बंध नहीं होता बल्कि निर्जरा ही है। ये मुद्दे की बात पकड़ी ना उन्होंने आपने पर आचार्य संबंध भद्र रत्नग्रंथ साहब का आचार में रत्न तयधारी मुनि आर्य का और श्रावक साहब का रूप चतुर्विध संग के से निष्कपट भाव से यथा योग सद्भाव रखना, सद्व्यवहार करना एवं सहज वात्सल्य भाव रखने को वात्सल्य अंग और अज्ञानांधकार से व्याप्त जगत में जिन शासन की महिमा का प्रकाशन करके उक्त अज्ञानाधिकार के यथा योग अभाव करने को जिन शासन की प्रभावना करने को प्रभावना अंग कहते हैं। देखो ये जो अपन यहां महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं ना आपको जैन शास्त्र है, शुद्ध वस्तु का स्वरूप, ये असली प्रभावना अंग है क्या? असली प्रभावना अंग क्या है बोलो? जैन धर्म का प्रभावना प्रभाव कैसे बढ़ेगा? आचार्य अमृतचंद पुरुषार्थ द्वीपाय में मुक्ति सुख के कारण भूत अहिंसा धर्म में और साधर्मी जन्मों से निष्कपट प्रीति रखने को वात्सल्य अंग और रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की और दया दान तप जिन पूजा और ज्ञान के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करते हैं को प्रभावना अंग कहते हैं। ये सब निश्चय व्यवहार शामिल करके बात चल रही है। इस प्रकार रत्नत्रय धर्म और उसके धारकों से हो गया नक्की दोनों, वात्सल्य भाव होना वात्सल्य अंग और रत्नत्रय धर्म धारण कर स्वयं अपनी और रत्नत्रय धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग है। वास्तव में ये जो अपनी पाठशाला खोलना ना, इसको हम प्रभावना अंग भी कह सकते हैं, ज्ञानदान भी कह सकते हैं, क्योंकि मूल तत्व की बात उसमें सिखाई जाती है। वो इतने कॉलेज खोल खोल के वो कोई ज्ञानदान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो अज्ञान है। क्योंकि नाम ही देना है तो अज्ञान दान दो ना नाम उसका। अब हम कहते हैं बहुत ज्ञान का प्रचार हो गया है, ज्ञान का हुआ है कि अज्ञान का है? क्या क्या हुआ बोलो? सम्मा दर्शन के उस आठ अंगों का निरूपण होने के बाद सभी अंगों के संदर्भ में कुछ आवश्यक स्पष्टीकरण पंडित जयचंद जी छावड़ा करते हैं जो इस प्रकार है। ये पूरा वर्णन हो गया आठों अंगों का और निर्दयाधिकार खत्म होने लग गया तो उसमें जयचंद जी छावड़ा को कुछ कहने का भाव आया तो वो उन्होंने पूरा ये डेढ़ पेज है उसे अपन पढ़ते हैं। पढ़ो कोई अच्छे गले वाला शांति से स्पीकर पे पढ़ो है?
सम्यक दर्शन के उक्त आठ अंगों का निरूपण होने के बाद सभी अंगों
से धीरे धीरे
सभी अंगों के संदर्भ में कुछ आवश्यक स्पष्टीकरण पंडित जयचंद छाबड़ा करते हैं जो इस प्रकार है। इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में यह कहा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निसंकित आदि आठ गुण निर्जरा के कारण है। इसी प्रकार सम्यक्त के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। इस ग्रंथ में निश्चय नय प्रधान कथन होने से यहाँ निसंकादि गुणों का निश्चय स्वरूप स्वार्थ बताया गया है। उसका सारांश इस प्रकार है, जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निसंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप सुचरित ना हो अथवा संदेह युक्त ना हो उसके निसंकित गुण होता है। जो
सुनो देखो, अभी जयचंद जी छाबड़ा ने जो निकाला मर्म इसमें बहुत है। क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि आत्मा ज्ञान सिद्धांत में निसंक हो, पहली बात तो ये है। सम्यक दर्शन का ज्ञान जो हुआ ना, आत्मा का ज्ञान और सिद्धांत, उसमें निसंक हो और भय के निमित्त से स्वरूप में से चलित ना हो और संदेह युक्त ना हो, भाई ऐसा है कि ऐसा, इसका नाम निर्भय होना है। समझ गया ना? ये दुनिया से नहीं डरना, बोले आ जाए तो उनसे नहीं डरना, शेर आ जाए तो उनसे नहीं डरना, उसका नाम निर्भय नहीं है। उन्हें क्या दिया ना कि किसी के भय से अपने उसमें संदेह ना पैदा करे, धर्म में इसका नाम है निसंकित गुण, और अपने स्वरूप से चलित न हो। पढ़ो आगे। यहाँ
जो कर्म फल की वांछा ना करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा ना करे उसके निकांक्षित गुण होता है। जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानी ना करे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। जो स्वरूप में मूढ़ ना हो स्वरूप को यथार्थ जाने उसके अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे उसके उपगुण गुण होता है।
देखो दूसरे के दोष छिपाए वाली बात ही नहीं। अन्य गुणों को गौण धर्मों को गौण करे अपने। हाँ, 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 चलो।
जो स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे उसके स्थितिकरण गुण होता है।
दूसरों की बात ही नहीं है। हाँ।
जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है उसके वात्सल्य गुण होता है। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित कर प्रकट करे उसके प्रभावना गुण होता है। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्मबंद होता था उसके नहीं होने देते, और इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मुहे के उदय रूप संकादि प्रवर्ते तो भी उनकी संकादि की निर्जाही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता, क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मुहे के उदय के निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूप ही निर्जरा के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बदा हुआ कर्म भी खिल जाता है, उसी प्रकार नवीन बदा हुआ कर्म भी खिल जाता है। उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप ही है। जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे मुमत्व बुद्धि नहीं होती। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति मुमत्व न होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है, वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही है। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता, अथा उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुए के समान ही है, ऐसा जानना चाहिए। यह निसंकादि आठ गुण व्यवहार नये से व्यवहार मोक्ष मार्ग में इस प्रकार लगाने चाहिए।
ये तो निश्चय की बात थी, अब व्यवहार की बात बता रहे हैं।
जिन वचनों में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र में नहीं दिखने से निशंकित है।
संख्या पढ़ते हो, कोई दूसरा नहीं है, इतनी तरह पढ़ भी नहीं सकता शुद्ध। और कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना, देखो जिन वचनों में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र से नहीं दिखने को निशंकित तत्व है।
दूसरा संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सुनिकांक्षित तत्व है। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि न करना सुनिर्विचिकित्सा है।
व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि नहीं करना, और दुनियादार की बारे बात नहीं है। हाँ।
देव गुरु शास्त्र लौकिक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ के स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़ दृष्टि है। धर्मात्मा में कर्मोदय से दोष आ जाए तो उसे गौण करना और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सो उपगोहन अथवा उपब्रिंहण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए आत्मा को स्थिर करना सो स्थितिकरण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योग करना सो प्रभावना है। इस प्रकार आठ गुणों का स्वरूप व्यवहार ने को प्रधान करके कहा है। यहां निश्चय प्रधान कथन में उस व्यवहार स्वरूप की गौणता है, सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है, स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है।
इस प्रकार सम्यक दर्शन के आठ अंगों के संदर्भ में निश्चय अंग और व्यवहार अंग का स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो जाता है, किंतु इस समय सार ग्रंथ में निश्चय की मुख्यता से ही अंगों का कथन है, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। देखो ये निश्चय और व्यवहार दोनों बताए, जिस व्यवहार को हम आठ अंग माने थे वो व्यवहार भी यहां कहीं दिखाई नहीं देता है ना। अब एक एक पे जिन वच में शंका न धार, अब क्या भगवान ने जो कहा उसमें कोई शंका नहीं है कि क्या कहा कि वो हमें पता नहीं है। हमें भोगों की कांक्षा नहीं करना और स्वर्ग की निरंतर मन में चाह बनी रहना, अनुकूल संयोगों की चाह बनी रहना और उनमें सुख बुद्धि पूर्वक चाह बनी रहना, वो तारक्रम हो के उदय से चाह बनी रहना अलग बात है। ऐसे ही गिलानी नहीं करना, तो बाह्य पदार्थों की बात तो करते हैं लेकिन अपने कहते हैं अंदर में अथवा बाह्य में कोई धर्म की वजह से उन्हें का पाप का उदय आ जाए, पर जैसे मुनिराज को कुष्ठ हो गया, किसी धर्मात्मा को हो गया, कोई भी हो चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो सम्यक दृष्टि, लेकिन पाप के उदय में किसी को भी कोई भी बीमारी आ सकती है ना, और बुढ़ापा नाम की बीमारी तो हर एक को आ ही जाएगी जिंदा रहेगा तो उसमें जो शिथिलता देखे किसी तरह की दिखाई देती है ना, तो उसको देखकर उसके प्रति अरुचि भाव नहीं रखना, ये वास्तव में निर्विचिकित्सा अंग है। तत्व के बारे में मूढ़ता नहीं रखना, माने बिल्कुल उसके स्पष्ट निर्णय होना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। उपगुहन अभी बताया ही है कि अपने गुणों को बढ़ाना और अपने जो अप्रयोजन भूत अपने ही जो गुण हैं उनको गौण करना, छिपाना नहीं उनको गौण करना, अथवा दूसरे की अपने बहुत सी बातें धर्मात्मा जीव है, अब उनकी कोई ऐसी बात एकाध है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन पाप कर्म के उदय से उनके दारिद्र है और चीजें देखने में आती हैं, तो उनके प्रति अरुचि नहीं दिखाना है ना। अब ऐसे ही धर्म और धर्मात्माओं के प्रति सच्चे धर्म का स्वरूप समझ है, तब तो धर्मात्मा कौन है ये निर्णय कर सके ना, वो बात्सल्य भाव रखना। देखो लड़ना तो किसी से भी नहीं, लेकिन वो बात्सल्य भाव नहीं है, हमें इस देश में इस समाज में शांति से रहना है। तो मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं आपको, इस देश में हिंदू मुसलमान ईसाई सब रहते हैं ना, और माजभक्ति और कैसे कैसे कर्म वाले रहते हैं, लेकिन आखिरकार हम सब उनके बीच में ही रहना है ना, ना तो उनको इस देश से अपन निकाल सकते हैं और ना अपन भाग के कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं कि जहां अधर्मात्मा जीव हुए ही नहीं, तो उनसे लड़ते रहना क्या है? उनसे सामान्य व्यवहार तो बना के रखना ना, उसे बात्सल्य भाव नहीं कहेंगे, फिर भी नहीं लड़ना तो अच्छा ही है, शांति से रहना है। तो अभी जैन अजैन की बात करी, हिंदू मुसलमान की, अभी अपने पूरी जैन समाज में समझ लो कि हम दिगंबर श्वेतांबर हैं, अब भले ही वो ने पांचवें अध्याय में रखा हो, गीत में छात्र में रखा हो, ताजी बातें करें, अब एक तीर्थ पे गए, अब वहां दोनों का ही कब्जा है उस पर, क्या करो, सम्मेलित कर है अपने सब बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन सब की ऐसी ही परिस्थिति है कि नहीं है, तो क्या करना, वहां जाके लड़ना? मैं आपसे पूछता हूं, वो लड़ने वालों को लड़ने दो मुकदमा, अपने अधिकार को लेने दो, लेकिन हम तो सहज भाव से ही अपने मंद कसाय रूप से बात्सल भाव से ही रहेंगे ना, बात्सल अंग नहीं, बोले वहां कैसे रहना चाहिए, कहने साहब रक्षा करना, धर्म की रक्षा, 24 घंटा रक्षा ही रक्षा करते रहना। हमने ऐसी रक्षा करी कि 150-200 बरस से लड़ते लड़ते और आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है ऐसी रख जगह ली। वो पार्श्वनाथ है ना अंतरिक्ष के, वो तो बिल्कुल जेल में ही बंद है। कम से 45 साल से मैं देख रहा हूं, 45 साल पहले भी गया था और आज भी। क्यों, क्या था? मैं तो जो बात कहता हूं वो तो लोगों को इतनी नहीं पचेगी कि बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं कहता नहीं। समझ में आई ना कि अभी मैं आप इन समझदारों से ये बात कहना चाहता हूं कि एक मूर्ति के 22 घंटे तक आंख कान लगे रहे, क्यों? और फिर 2 घंटे को हमने उन्हें निकाल के और उनके पूजने में हमारा कोई मिथ्यात्व नहीं होता है? समझ गए? और उनके लिए लड़ाई लड़ लड़के हमने 2 घंटे के 3 घंटे करा लिए हैं, और अभी एक मंदिर में इधर इतनी बड़ी स्टेज है, इधर दिगंबर मूर्ति रखी, इधर श्वेतांबर रखी, इधर बीच में तीसरी रखी, तो इधर ही इसके रखने से गीत में छात्र हो जाता है। उस मूर्ति को कोई टच नहीं करता, कोई लेना देना नहीं, तो अपने दृष्टि से पूजा करो तो प्योर दिगंबर है, उसमें कुछ नहीं है, तो श्वेतांबर वहां करेंगे तो अपनी पूजा करेंगे उस मूर्ति के सामने जो है ना लोनावाला में, ऐसे इतने से बड़ा चबूतरा है। उस चबूतरे पे एक टेबल यहां रखी, एक वहां रखी ना, एक यहां रखी, ऐसी 3 वेदियां अलग अलग हैं, और एक इसमें तो बीच में खंभा नहीं है, उसमें तो बीच में इधर खंभा आ गया, इधर एक इधर आ गया, तो 3 खाने बन गए। अब इतनी दूर में तो वो गीत में छात हो गया, और बेई मूर्ति पे 22 घंटे वो रहा सब, और वो उतार दो तो पूरा उतरता थोड़ी है, वो लेप किया हुआ चंदन लगा हुआ पूरा उतरता है सब है? उसे लड़ लड़ करके करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके वो लेना और उसके लिए करे रहना, उसमें जिंदगी लगा देना, वो बहुत पहलवानी का काम है। समाज को उसके लिए अनंत अनंत उपकार मानना चाहिए। क्या मैं विवेक क्या कहता है, यानी इतनी स्थूल बात भी हमारी समझ में नहीं आती है, और वहां पर इतने वर्षों से हम लड़ रहे हैं कि वो सारा जितना पैसा हमने घूस में मजिस्ट्रेट को वकीलों को खिलाया है ना, उससे वहां सोने की पहाड़ियां बन जाती हैं। क्या उनसे मर जाते, वो सोने के बन जाते, दोनों के अलग अलग ख्याल में ही ना, और अभी भी उसी लाइन पर लगे रहना, समाज का करोड़ों रुपया इकट्ठा कर करके उन वकीलों को मजिस्ट्रेटों को हिंदू मुसलमान को खिलाते रहना, ये कौन सी समझदारी का काम है? इतनी आप कह दोगे चले जान दे, लुट जान दे अपनी, वहां तो तुम्हें लुट नहीं जाने दिया, यहां तो हम लूटा है ना, उसमें तो 1 पैसा नहीं लगा उस मंदिर में, और तुम्हारी मूर्ति विराजमान हो गई, तुम्हारा अधिकार तो हो गया ना उसमें, वहां तक पहुंचते जा सकते हो, तुमने जब पहुंच भी नहीं सकते थे भले आदमी, अरे कौन देखा गया तुमने उसमें कितने पैसा खर्च करे और नहीं करे, क्यों? इसके तुम तो एक क्या स्वरूप है, अब कोई 1 सेकंड बिताद करना चाहता ही नहीं है, चलो भाई आगे पढ़ो। कहां थे? हाँ, अब निद्रा अधिकार का समापन करते हुए सम्मा दर्शन की महिमा व्यक्त करते हुए आचार्य अमृतचंद अंतिम कलश लिखते हैं जो इस प्रकार है, पढ़ो।
रुदन बंदम नवमिति निजय संगोष्ठा विरंगय प्रागवदम तू क्षेम नयन निज रोद्र प्रणय सम्यक दृष्टि सहमति रसा सदादि मध्यान्ते मुक्तम ज्ञानं भूत्वा नटति गगना भोग रंग विकार बंद न हो नव कर्म का पूर्व कर्म का नाश नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश।
4 पंक्ति का लंबा छंद है मंदाक्रांता, और उसका पूरा भाव ये दोहा जैसे छोटे छंद में दो लाइन में पूरा आ गया है, बताओ क्या छूटा है। जो संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और नहीं जानते हो तो कोई चिंता की बात नहीं, ये नीचे संस्कृत का अर्थ लिखा है, हिंदी वाले का नहीं। पढ़ते हैं अपन, इस प्रकार नवीन बंध को रोकता हुआ अपने आठ अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं निजात्मा के अतिरस से आदि मध्य और अंत रहित ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में अवगाहन करके नाचता है। ये इस छंद का, संस्कृत वाले छंद का अक्षर अक्षर का अनुवाद है, है ना? न ज्ञानम भूत्वा नटति, है ना लिखा। अब हिंदी का, बंध न हो नव कर्म का, नए कर्म का बंध नहीं होता और पूर्व कर्म का नाश माने निर्जरा, ये संवर और ये निर्जरा, और नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश, आठ अंग का धारी वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के प्रकाश में नृत्य करता है। ऊपर नाचता है, इसमें नृत्य करे से पूरा भाव आ गया। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि इस अधिकार का अंत हो रहा हो, नाटक जैसा है ना, तो ये समझते नाटक के अंत में एक गाना हो गया एक नाच हो गया, वो करते ना अभी अभी नाटक वाटक करते, बीच बीच में नाच गाने करते हैं ना, तो निजराधिकार हो रहा है, तो सम्यक दर्शन नाच रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन ने संवर कर दिया है, आगे कर्म को रोक दिया है और पुराने कर्मों को झड़ा दिया है, निजरा कर दी है, इसलिए वो सम्यक दर्शन स्टेज पर नाच रहा है, ऐसा एक पूरा हुआ। चलो, उक्त कलश में नवीन बंध को रोकने वाले और पुराने कर्मों की निजरा करने वाले अष्ट अंगों से युक्त सम्यक दृष्टि जीव आनंद में मगन होकर नाचते हैं, ऐसा कहकर सम्यक की महिमा बताई गई है। इस कलश का भावानुवाद कई बार बनारसी दास जी नाटक समयसार में इस प्रकार करते हैं। अब ये बहुत मार्मिक भावुक छंद है, पढ़ो।
पूर्व वंदे नाशे सोतो संगीत कला प्रकाश, नभ वंदे रुंदी ताल तोरते उछरी के, निसंकेत आदि अच्छे अंग संग सखा जो, समता आलाप चारी करे सुर भरी के, निजरा ना दे गाज ध्यान मेरे ढंगवाज, छक्यो महानंद में समाधि रिधि करी के, सत्ता रंग भूमि में मोकते भयो तेहू का, नाचे तो सृष्टि नटे जाने स्वांग धरी के।
देखो उसको इन्होंने बहुत बढ़िया नाटक के स्टेज पर नृत्य कर रहे हैं और आलाप भर भर के गाना गा रहे हैं। गाने की जो विशेषताएं होती हैं वो आलाप भरना जानते, आ बोलते हैं ना बहुत जोर जोर से, वो आलाप भरना बोलते हैं। तो पूरा एक दृश्य खड़ा कर दिया है। इस छंद को पढ़कर कोई भी चित्रकार एक बहुत बढ़िया चित्र बन सकता करता है। एक कोई नाटककार नाटक की स्टेज पर एक दृश्य उपस्थित कर सकता है। देखो सुनो, आप पढ़ते हैं थोड़ा। पूर्व बंध नाशे सो तो संगीत कला प्रकाश है, पुराने बंध का नाश हुआ, ये तो मतलब बढ़िया संगीत हो रहा है, संगीत के कला का प्रकाश है। कौन इधर पहले नीचे देख लो, सत्ता की रंग भूमि में शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि रूपी नट ज्ञान का स्वांग धर के नाचे माने नाचता है। सबसे नीचे की पंक्ति में है क्या? शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि नट ज्ञान का स्वांग धर के नाचता है। यह तो सम्यक दृष्टि तो नट है और उसने ज्ञानी का स्वांग बनाया है, समझे ना, ज्ञान का उसने स्वांग बनाया है। और सत्ता की जो रंग भूमि है उसमें वो मुक्त होकर नाचता है, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, बंधन नहीं है, एकदम उछल उछल के कूद कर करके नाचता है, कोई मर्यादा नहीं है। देखो अब उसमें क्या करता है, पूर्व बंध नाशे सो तो संगीत कला प्रकाश है, ठीक है ना इसका अर्थ। और नव बंध को रुंधी रोका, ये ताल तोरत उछरिके, और ये ताल तोरत उछरिके, कोई आदमी एकदम उछल के आए और ताल में जाए, उछलता हुआ आए एकदम स्टेज पे, देखो ताल तोरत उछरिके, उछरिके ताल को तोड़ता है, ताल बजाता है, समझ गए ना, वो उसके गाने के साथ मिलाकर, ऐसा नहीं ताल जैसे ठोक दिया चाहे जाओ है, और निकंसित अंग आदि अष्ट अंग सखा जोड़ी, आठ उसने अपने सखा मित्रों को इकट्ठा किया है, नाच अकेले तो होता नहीं, तो आठ अंग रूपी मित्रों को जो सखा माने मित्र, जोड़ी माने जोड़ कर, और समता अलापचारी करे सुख भर के, अलापचार इसको बोलते हैं, तो समता जो है वो मान लो अलाप भर रही है ना, और निर्जरा नाद गाजे, निर्जरा का जो ना एकदम वो जोर जोर से गाते हैं ना, तो ध्यान मृदंग बाजे, और आत्मा का ध्यान रूपी मृदंग बज रहा है, मृदंग एक वो बाजा होता है जो बजन बजता है वो, तो छको महानंद में समाधि रीझ करके बहुत आनंद में छक गया है, एकदम नाचते नाचते एकदम बहुत खुश हो जाते हैं ना, सत्ता की रंग भूमि में मुक्त होकर तीहूं काल सम्यक दृष्टि ज्ञान रूपी नट का, सम्यक दृष्टि नट ज्ञान का स्वांग धरकर नाचता है, इस अर्थ लगाया ना, नीचे लिखा है पढ़ लो शांति से घर पे बैठ के पढ़ना तो ख्याल में आएगा उसका अर्थ, नीचे पढ़ पढ़ के ऊपर से बैठा लेना, संत का अर्थ ऐसा बैठा लेना कि तुम्हें प्रवचन में करना पड़े तो ऊपर से कर सको, देखो पूर्व बंध के नाश रूपी संगीत कला का प्रकाश करता हुआ नवीन बंध को रोक कर, ये तो हमने ही लिखा है ना, घबराना नहीं, उछल कर ताल तोड़ता हुआ निसंकित आदि अष्ट अंगों रूपी शाखाओं को जोड़कर उनके साथ स्वर भर के समता रूपी आलाप करता हुआ निर्जरा रूपी नाद करता हुआ ध्यान रूपी मृदंग बजाता हुआ समाधि में रीझ कर तीनों काल मुक्ति रूप हुआ शुद्ध दृष्टि रूप नट सत्ता की रंग भूमि में ज्ञान का स्वांग धरकर देश बनाकर महानंद में छका हुआ मस्त होकर नाच रहा है। पूरा अष्टांग जो पूरा चित्र उन्होंने बनारसी दास जी ने, वो कवि थे ना इसलिए उनका मन ऐसी चीजों में बहुत लगता था। ये सांग रूपक है, सांग रूपक जानते कैसे बोलते हैं, जब उसका हर अंग घटित किया जाए तो सांग रूपक बोलते हैं। देखो उक्त कलश में नृत्य कला के संपूर्ण उपादानों को घटित करते हुए सम्यक दृष्टि रूपी नट को ज्ञान के स्वांग में आनंद में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसमें पूर्व बंध के नाश को संगीत कला का प्रकाश, नवीन बंध से संवर के को ताल तोड़ने, निसंकित आदि अंगों को साधर्मी मित्र, समता को अलाप, निर्जरा को नाद, ध्यान को मृदंग का रूप दिया गया है। इस प्रकार यह सांग रूपक खड़ा कर दिया गया है। इसमें कवि का संगीत कला व नृत्य कला का ज्ञान और रस प्रतिबिंबित होता है। इसका मर्म कोई संगीत कला और नृत्य कला विशेषज्ञ ही जान सकता है और रस भी वही ले सकता है, समझ गए ना। देखो मूल प्रयोजन की बात यह है कि इस इसमें सम्मर और निद्रा से संपन्न सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद को बताकर उसकी महिमा बताई गई है, उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर इस अध्याय का समापन किया गया है। इस कलश के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, फिर पढ़ो भाई, ये भी बहुत मार्मिक है, बड़ा है लंबा, शांति जी पढ़ो, एक डेढ़ पेज का है, शांति से पढ़ लो।
सम्यक दृष्टि को शंकाधिकृत नवीन बंध नहीं होता और स्वयं अष्टांग युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व के बंध का नाश होता है, इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके निर्मल आकाश रूपी रंगभूमि में ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। प्रश्न, आप यह कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, किंतु सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंध कहा गया है और घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है, इसलिए दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य इन गुणों का घात भी विद्यमान है। चारित्र मोह का उदय नवीन बंध भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंध न माना जाए तो यह भी क्यों न मान लिया जाए कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंध नहीं होता। उत्तर, बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय ही है और सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है तथा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घाती कर्मों की प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध तथा शेष अघाती कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है। तथापि जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित होता है वैसा नहीं होता। अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ही है। उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता और जहां आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बंध की गणना कौन करता है। वृक्ष की जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहने की अवधि कितनी होती है। इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्यतया ज्ञानी अज्ञानी होने के संबंध में ही प्रधान कथन है। ज्ञानी होने के बाद जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जाएंगे। निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना चाहिए। कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह क्रमशः अपनी शक्ति अनुसार साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा और महल उज्जवल हो जाएगा तब वह परमानंद को भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में समझना चाहिए। गुप्त कलश का अभिप्राय स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं।
कोई खास बात नहीं है। इस प्रकार से निद्रा अधिकार में यह स्पष्ट किया गया है कि अष्ट अंगों से संपन्न सम्यक दृष्टि जीव पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करते हुए नवीन कर्मों के बंध को रोक देते हैं और अनंत अतिंद्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। सीधी सच्ची बात यह है कि सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृतियों का संवर होता है और प्राण जो सप्ताह में पड़ी हो उनकी और भी आगामी होने वाले बंध से कर्मों की निर्जरा होती रहती है। ये सम्यक दृष्टि की निर्जरा अधिकार में सबसे बड़ी उपलब्धि है। निर्जरा अधिकार समाप्त करते हुए अंत में पंडित जयचंद जी छाबड़ा एक छंद लिखते हैं जिसमें वे संपूर्ण अधिकार की विषय वस्तु को समेट लेते हैं। वह छंद इस प्रकार है। पूरे अधिकार में क्या कहा गया है वो बात इस छंद में है, पढ़ो।
सम्यक वन्ते महन्ते सदा सम भाव रहे दुख संकट आए कर्म नवीन बधे न तवे पूरव वन्दे झणि तिन भाए पूरण अंग सुदर्शन रूप धरे नित ज्ञान बड़े निज पाए यूं शिव मार्ग साधी निरंतर आनंद रूप निजातम थाए।
तो बहुत सीधा सरल छंद है कि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही समता भाव में रहता है। जितने कितने भी दुख और संकट क्यों न आवे उन्हें वो समता भाव से समता भाव धारण करके बर्दाश्त करता है। नवीन कर्म बंधे ना और पूर्व कर्म के कर्म झड़ जाते हैं, तो समर भी होता है और निर्जरा भी होती है। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप अष्टअंग का धारी होने से अब सुदर्शन सुंदर है और निरंतर ज्ञान उसका बढ़ता रहता है। इस प्रकार मुक्ति के मार्ग को साध कर निरंतर आनंद रूप अपने आत्मा में रहता है, ऐसा इस निर्जरा अधिकार में ये बात कही गई है। सम्यक दृष्टि महापुरुष अनेक दुख और संकटों के आने पर भी सदा ही संभाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते। यही कारण है कि उनके पूर्वबद्ध कर्म बिना फल दिए झड़ जाते हैं और नवीन कर्मों का बंध उन्हें नहीं होता। वे सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के आठों ही अंगों के धारी होते हैं और निजात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण उनका ज्ञान स्वभाव की आराधना निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार वे मुक्ति के मार्ग की साधना करके निरंतर आनंद रूप होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के निरंतर होने वाली निर्जरा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह निर्जरा अधिकार समाप्त होता है। अब कल से बंधाधिकार चलेगा।